नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश। लोकतंत्र में बहिष्कार की क्या जरूरत? गठबंधन द्वारा बयान किए जाने के बाद सबसे पहला विरोध इन एंकरों की तरफ से आया, जिन्होंने नाखून काटकर शहीद होने की घोषणा कर दी। खुद पर लगाए बैन को आपातकाल घोषित कर पत्रकारिता पर हमला तक करार दे दिया। जिन 14 एंकरों पर बैन लगाया, उस में से ज्यादातर ने बैन वाले दिन भी अपने प्रोग्राम में विपक्ष द्वारा लगाए गए बयान को गलत बताया, लेकिन उनमें से किसी ने एक ने भी यह बताने की हिम्मत नहीं की कि बयान लगाए जाने के पीछे क्या कारण है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए लखनऊ हाई कोर्ट परामर्श केंद्र के मध्यस्थ एवं कांग्रेस पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य एडवोकेट इंद्र प्रताप सर जुड़े हुए हैं। सर, मोबाइल होने पर स्वागत सर आपका।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको आमंत्रित किया।
जी सर।
और जी,
सर, जो गठबंधन द्वारा जो मीडिया के प्रोग्रामों पर प्रतिनिधि न भेजने का निर्णय जो लिया गया है, इसको किस नजरिए से, किस तरीके से देख रहे सर?
देखिए, जो मेरा पहला अपना विचार है कि
जी
जो इंडिया गठबंधन बना है,
जी
इस गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं वो आज
जी
भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एकजुट होकर के खड़ी हैं,
जी
और इन पार्टियों के बीच में भी तमाम अंतर विरोध रहे हैं। इंडिया में भी जो पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन बनने से पहले इनके बीच में भी तमाम अंतर विरोध रहे हैं। हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है, हर पार्टी का अपना एक सिस्टम है। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आती है कि जब ये इंडिया गठबंधन तरफ से या तो कोई प्रवक्ता डिसाइडेड हो कि वही बहस करे, और अगर ऐसा कोई प्रवक्ता डिसाइडेड नहीं है तो इन परिस्थितियों में एंकरों के बीच में बैठ करके और एंकरिंग करना और उसके बाद स्टेटमेंट या बयान जारी करना, प्रवक्ताओं के बीच में आपस में तमाम झड़पें होती हैं, तमाम बातचीत होती है, तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सब चीजों से बचने के लिए भी ये एक प्रकार हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ने इन जो ये एंकर्स थे, क्योंकि मैक्सिमम यही एंकर जो है एंकरिंग करते हैं जिन जिन मीडिया से जुड़े हुए हैं, और इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से कोई विशेष प्रवक्ता नहीं नियुक्त है, तो ऐसे में प्रवक्ताओं के बीच में बैठ करके इंडिया गठबंधन के और भारतीय जनता पार्टी के या अन्य किसी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन में नहीं है उनके बीच में तमाम ऐसी बातें पैदा हो सकती हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
सर, लेकिन जिस तरीके से इंडिया जो गठबंधन है, उन्होंने कहा है कि धार्मिक तरह के कार्यक्रम हो या इस सांप्रदायिकता पर, जिस तरीके से जो आजकल मीडिया में इन कार्यक्रमों में जो बुलाए जाते हैं, तो उन पर एक तरीके से सांप्रदायिकता का वातावरण हो या फिर अन्य जो देश में कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उस पर सर एक तरीके के नेगेटिव थॉट देखे जा रहे हैं, इनका एक हवाला दिया जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा। तो इसको किस नजरिए से देखते कर, और इसको ही मुख्य रूप से रखा है कि इसी के कारण हम तो अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे या प्रतिनिधि को नहीं भेजेंगे।
देखिए, हम आपको बताएं कि जहां तक सांप्रदायिकता की बात है, धार्मिक भावना की बात है, तो आज के परिवेश में विगत 20-22 वर्षों से धार्मिक राजनीति का, धर्म को राजनीति में लाने का विशेष प्रयास किया गया। उसके पहले जातियों को आपस में बांट करके राजनीति करने का प्रयास किया गया, उसके बाद फिर धर्म को बांट कर राजनीति करने का प्रयास किया गया। उसमें पार्टियों को सफलता भी मिली, पार्टियों ने शासन भी किया और संवैधानिक ढंग से किया और संविधान के सिस्टम में रह करके किया, कभी संविधान में संशोधन करके किया, और करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जब सबसे बड़ी चीज यह है कि जब मीडिया के लोग जो एंकर्स हैं, जब कभी मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि जब मैं कभी देखता हूँ उसको, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देते समय जो छोटी पार्टियां हैं या जो कुछ ऐसी पार्टियां हैं वो अपनी बात को रखना चाहती हैं, और जैसे ही वो क्रक्स पे आती हैं वैसे ही एंकर उसको रोकने लगता है और बात को पलट के दूसरे की तरफ फेंक देता है। तो ये प्रजम्पशन जो है, ये अपने आप मानव स्वभाव होने के नाते, ये सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, जो समाज उसको बैठ कर देखता है वो भी भाव अभिव्यक्त करता है। जैसे कभी कभी हम लोग ग्रुप में बैठकर भी देखते हैं कि आज प्रोग्राम ये देख रहे हैं, तो उसमें एंकरों की कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी चीज दिखाई पड़ती है कि वो किसी ऐसी चीज को अपनी मीडिया के सामने ये नहीं लाना चाहते हैं कि उसके द्वारा किसी पार्टी विशेष की भावनाएं या उसका विचार आ सके सरकार के विरुद्ध। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा नहीं है कि वो जो रोक लगाया है इंडिया गठबंधन ने वो बहुत सोच समझ कर लगाया है, आपसी विचार विमर्श से लगाया है। तो मैं इस स्थिति में इस बात का, इंडिया गठबंधन का ये समर्थन में मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ये वास्तव में प्रतीत होता है। और इसके अलावा तमाम ऐसी न्यूज चैनल्स हैं जो उसको देखने पर ये पता लगता है कि जैसे ये कोई स्पेसिफिक कार्यक्रम चला रहे हैं, तो इसी फीलिंग आने पर ही ये निर्णय लिया गया है। और बेसिकली हमको लगता है ये निर्णय इसलिए भी लिया गया होगा कि आपस में इंडिया गठबंधन के मालिय प्रवक्ताओं के बीच में कोई बातचीत हो, अंतर विरोध पैदा हो, और उस अंतर विरोध को जो है विपक्ष कोई मुद्दा बनाए, तो इसलिए भी इनका बहिष्कार किया है।
सर क्या देखते हैं कि जनता के मुद्दे हो या फिर जनता इस बहिष्कार को किस तरीके से देखे और समझे सर इस मुद्दे को?
देखिए ऐसा है, जनता बहुत समझदार होती है, जनता सरकार चुनती है, और मेरा किसी भी एंकर से ऐसा नहीं है कि कोई अंतर विरोध है। हम तो मैक्सिमम सुनते रहते हैं, समय निकालते हैं तो जरूर सुनते रहते हैं, सबको सुनते रहते हैं। और एक एंकर जो होता है वो अपने एडिटर से बधा हुआ होता है, उसका एक प्रोग्राम होता है, उसके पीछे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो वहीं तक सीमित है। इसके ऊपर उसको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। वो भी अपना काम करता है और अपना जीविकोपार्जन करता है। तो ये किसी एंकर को ब्लेम इस करना व्यक्तिगत रूप से ये गलत होगा। एंकर तो एंकर होता है, उसका काम है एंकरिंग करना, तो वो करेगा और जिसके साथ में है उसके मार्गदर्शन में करेगा और उस पर विचार विमर्श करके करेगा। हम कहते हैं कि तमाम मीडिया वाले तमाम लोगों को तमाम प्रवक्ता लाके बैठा देते हैं, तमाम विशेष समाज लगता है कि समाज के वही जानकार हैं, इसके अलावा कोई जानकार नहीं है। रघु आज के समय में रघु ठाकुर जैसे व्यक्तित्व जो अभी जीवित हैं और जो समाजवाद को जीते हैं, जिनके अंदर वास्तविक समाजवाद है, और ऐसे व्यक्तियों को कभी भी राजकीय या न्यूज चैनल कभी आमंत्रित नहीं करते हैं कि उनको भी आमंत्रित करें और उनकी बात सुने। तो ये सब चीजें ये दर्शाती हैं कि समाज में जो संत हैं, जो निश्चित रूप से अपने पूरे जीवन को जिन्होंने समर्पित कर दिया, और ऐसे व्यक्तित्व रघु ठाकुर जी जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मिलने वाली पेंशन को मध्य प्रदेश सरकार से लेने से इनकार कर दिया और कहा देश सेवा के लिए कोई पेंशन नहीं ली जा सकती, ऐसे व्यक्तित्व की अगर ऐसे व्यक्तित्व को मीडिया बैठाए तो उससे देश के युवाओं को प्रेरणा मिल सकती है, समाज को प्रेरणा मिल सकती है। ऐसे ही विभिन्न पार्टियों में या कहीं पर समाज में ऐसे तमाम सामाजिक लोग हैं, उनको ला करके बैठा करके सार्थक चर्चा अगर करे तो वो निष्पक्ष चर्चा हो सकती है। लेकिन कुछ सदे हुए लोग हैं जैसे कि उनको महारत हासिल है कि वो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे बोलेंगे, फिर वही थोड़ी देर बाद जाके दूसरे चैनल पर बोलेंगे, फिर वही जाके तीसरे चैनल पर बोलेंगे, वही जाके चौथे चैनल पर बोलेंगे, और हर पार्टी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का, जैसे उनको उसी चीज में महारत है, उनको रटा रटाया फार्मूला है और वो उसी पर बोले चले जा रहे हैं और वो अपने मन की आवाज को कभी नहीं बोलते। प्रवक्ता भी कभी अपने मन की आवाज नहीं बोलता, पार्टी की नीतियां पार्टी के जो अनुशासन से बंधा हुआ है तो वही बोलता है जो उसको बोलना है, हो सकता है वो उसको व्यक्तिगत जीवन में अच्छा ना लगता हो। तो इसी प्रकार से एंकर भी है, तमाम ऐसे प्रश्न करता है जो शायद उसका मन में अंतर मन में वो भावना ना रही हो, लेकिन हर चीज जो है वो संस्था से संचालित होती है और संस्था के साथ रह के ही कार्य करना होता है। तो ऐसी परिस्थितियां जो इस समय पैदा हो गई हैं, तो ये परिस्थितियों में जो है हम ना एंकरों को दोष दे सकते हैं और ना ही जो लोग इस पर काम करने के लिए अभी इस समय स्टॉप है कि हम भाई इन एंकरों के साथ अभी एंकर जो है अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, तो वो भी गलत नहीं मैं हम कह सकता है, क्योंकि मेरे मन में तो जब बाप ने हमसे बात की थी तो मैंने इस पर गहन मंथन किया, तो मैं ये पाया कि जैसे मान लीजिए 28 पार्टियों का कोई गठबंधन है और 28 पार्टियों में से 5 के प्रवक्ता बैठाए गए और वो उसमें से एक किसी अन्य पार्टी विपक्षी का प्रवक्ता बैठाया गया, तो देखिए बातों बातों में तमाम चीजें निकल आती हैं। तो ऐसा अंतर विरोध जब आपस गठबंधन में भी हो जाएगा तो कोई ना किसी कोई ना कोई कारण आदमी वो पैदा करता है, उस कारण से वो प्रवक्ता अभी अपने आप को मीडिया के सामने लाने में सक्षम नहीं हो सकता, ये भी एक कारण हो सकता है। और मान लीजिए इनके बीच में और सहमति बनती है, सिस्टम आता है तो अपने प्रवक्ता लॉन्च करेंगे, तो कहीं ये एंकर गए नहीं है, इन एंकरों के सामने ही बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ा है।
जी सर, सर क्या देखते हैं जो अभी हाल ही में जिन मीडिया के जिन एंकरों पर बैन लगाया गया है उनके द्वारा कहा गया है कि आपातकाल घोषित कर पत्रकारिता पर हमला कर दिया है, सर क्या सर आपातकाल की स्थिति आपने उसके बारे में गहन अध्ययन किया होगा, तो सर क्या लगता है कि सर आपातकाल पत्रकारों पर लग चुका है?
देखिए मेरा अपना ये मानना है कि आपातकाल कार्यपालिका पर लग सकता है, आपातकाल विधायिका पर लग सकता है, लेकिन दो ऐसे स्तंभ हैं हमारे व्यवस्था में भारतवर्ष की, एक है न्यायपालिका और एक है आपकी ये पत्रकारिता और मीडिया, ये भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। और ये न्यायपालिका में भी हिम्मत वाले लोग होते हैं और संविधान की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं और अपने फैसले निडर होकर सुनाते हैं और रिटायरमेंट के बाद वो अकेले टहलते रहते हैं, हैं? तो ऐसे ही पत्रकारिता है, इस पर कभी आपातकाल लग ही नहीं सकता। इस पर अगर किसी व्यक्ति ने आपातकाल लगाया तो वो उसको भारतीय संविधान को संशोधन करना पड़ेगा, उसमें उसको चाइना की तरह अपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हमारे देश में ये जो हमारे पत्रकार हैं जिनके ऊपर जिनको ये महसूस हो रहा है, ये दर्शित करता है कि इनका मनोबल जो है थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन ये स्वाभाविक भी है, लेकिन यह है कि पत्रकारिता पर कभी भी आपातकाल लग ही नहीं सकता है। दुनिया के किसी भी देश में पत्रकारिता पर आपातकाल नहीं लग सकता, वहां से वहां का रहने वाला पत्रकार किसी दूसरे देश में जाकर के अपने देश में होने वाले जो अन्याय है और जो उसकी अड़चने हैं, आप मीडिया पर तमाम बार देखते होंगे कि रहने वाले चाइना के हैं या पाकिस्तान के हैं और वो जाकर के कनाडा में या कहीं और देश में जाकर के अपने देश के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकारिता पर और न्यायपालिका पर तो कभी आपातकाल लग ही नहीं सकता।
जी सर, तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट इंद्र प्रताप सर, जिन्होंने लोकतंत्र में बहिष्कार की क्या जरूरत इस विषय पर मोबाइल वाणी पर प्रखर होकर अपनी बात रखी। सर मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार आपका।
जी छिंदवाड़ा वाले।